නමෝ භගවතේ වාසුදේවාය ඕම් නමෝ භගවතේ වාසුදේවාය ඕම් නමෝ භගවතේ වාසුදේවාය නාරායනම් නමස්කෘත්‍යම් නරං චෛව නරෝත්තමං දේවී සරස්වතී ව්‍යාසං තත ජය මුදීරේ නෂ්ඨ ප්‍රායේෂු අභද්‍රේෂු නිත්‍යං භාගවත සේවයා භගවතී උත්තම ශ්ලෝකේ භක්තිර්භවති නෛෂ්ඨිකී නම පංකජනාභාය නම පංකජමාලිනේ නම පංකජනේත්‍රාය නමස්තේ පංකජාංග්‍රේ මුඛං කරෝති වාචාලං පංගුං ලංග්‍රයති ගිරිම් යත් කෘපාතමහං වන්දේ ශ්‍රී ගුරු දීනතරිනම් පරමානන්ද මාධවං ශ්‍රී චෛතන්‍යේශ්වරම්
හරේ කෘෂ්ණ. तो श्रीमद् भागवत को प्रारंभ करने के पूर्व मैं सभी यहाँ उपस्थित वैष्णव से सीनियर भक्तों से आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं श्रीमद् भागवतम पर प्रभुपाद के ग्रंथों से जो कुछ सीखा है उसके अनुसार बोल सकूँ और जो भी मेरे से कुछ त्रुटि होगी वैष्णव क्षमाशील होते हैं तो आप क्षमा कर दीजिएगा. हरे कृष्णा. तो श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद से 13वां अध्याय और श्लोक क्रमांक है 15.
मनस्विना निर्जित दिग्गजेन्द्रा मम इति सर्वे भुवि बद्धवैरा मृदे शैरन् न तु तात् व्रजन्ति यात् नस्तदण्डः गैतवैरः अभियाति. मनस्विनो निर्जित दिग्गजेन्द्रा ममेति सर्वे भुविबद्धवैरा हृदे शैरन्न तु तद्व्रजन्ति यन्नस्तदण्डो गतवैरभियाति. मनस्विनो निर्जिदिग्गजेन्द्रा ममेति सर्वे भुविबद्धवैरा मृदे शैरन्न तु तद्व्रजन्ति यन्नस्तदण्डो गतवैरभियाति. मनस्विनो निर्जितदिग्गजेन्द्रा ममेति सर्वे भुविबद्धवैरा മൃദേ ശൈരണ്ണതു തദ്വ്രജന്തി യന്നാസ്തദണ്ഡോ ഗതവൈരഭിയാതി.
कृपया पढ़िए. माताजी, शब्दार्थ इस प्रकार है. मनस्विना बड़े बड़े वीर पुरुष विचारक निर्जित दिग्गजेंद्रा जिन्होंने हाथियों के समान बलशाली वीरों को जीत लिया है. ममा मेरा, मेरा देश, मेरी भूमि, मेरा परिवार, मेरा धर्म, इति इस प्रकार सर्वे समस्त महान राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक नेता भूवि इस संसार में बद्ध वैरा परंपरा से वैर भाव उत्पन्न कर रखा है. मृदे युद्ध में शैरन भूमि में मृत होकर गिरे हुए. न नहीं तो लेकिन तथा श्री भगवान का धाम. व्रजंती पहुँचते हैं. यता जो नस्तदंडः सन्यासी गतवैरा जिसका विश्व भर में किसी से वैर भाव नहीं. अभियाति उस सिद्धि को प्राप्त करता है. अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदान स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा. श्री प्रभुपाद की ऐसे अनेक राजनीतिक तथा सामाजिक वीर पुरुष है जिन्होंने समशक्ति वाले वीर वाले शत्रु पर विजय प्राप्त की है. तो भी वे अज्ञानवश या विश्वास करके कि यह भूमि उनकी है परस्पर लड़ते हैं और युद्ध भूमि में अपने प्राण गंवाते हैं. वे सन्यासियों के द्वारा स्वीकृत आध्यात्मिक पथ को ग्रहण कर सकने में अक्षम रहते हैं. वीर पुरुष तथा राजनैतिक नेता होते हुए भी वे आत्म साक्षात्कार का पथ नहीं अपनाते. कृपया दोहराइए. ऐसे अनेक राजनीतिक तथा सामाजिक वीर पुरुष हैं जिन्होंने समशक्ति वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है. तो भी वे अज्ञानवश यह विश्वास करके कि यह भूमि उनकी है परस्पर लड़ते हैं और युद्ध भूमि में अपने प्राण गंवाते हैं. वे सन्यासियों के द्वारा स्वीकृत आध्यात्मिक पथ को ग्रहण कर सकने में अक्षम रहते हैं. वीर पुरुष तथा राजनीतिक नेता होते हुए भी वे आत्म साक्षात्कार का पथ नहीं अपनाते. तात्पर्य बड़े बड़े राजनीतिक नेता भले ही अपने समान शक्तिशाली राजनीतिक शत्रुओं को परास्त कर दें किंतु वे अहर्निश साथ रहने वाले प्रबल इंद्रिय रूपी शत्रुओं का दमन नहीं कर पाते। इन निकटस्थ शत्रुओं को न जीत सकने के कारण ही वे अन्य शत्रुओं जीतने का प्रयास करते रहते हैं और अंततः जीवन संघर्ष में मर जाते हैं। वे न तो आत्म साक्षात्कार का पद ग्रहण करते हैं और न सन्यासी ही बनते हैं। कभी कभी ये महान नेता सन्यासी का वेश धारण करके अपने आप को महात्मा कहलवाने लगते हैं, किंतु उनका एकमात्र प्रयोजन अपने राजनीतिक शत्रुओं को परास्त करना रहता है। क्योंकि वे अपने जीवन को ये मेरा है कि मोह से भ्रष्ट कर चुके होते हैं, अतः न उनकी आत्म उन्नति हो पाती है और न वे माया के चुंगल से मुक्त हो पाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिक। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवाञ्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचात देशतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। जय श्री श्री राधा बिहारी की सीताराम लक्ष्मण भक्त नमान की निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में राजा रघुगोन को जड़ भरत जी के द्वारा उपदेश दिए जा रहे हैं। तो पिछले अध्यायों में भी राजा जड़ भरत ने राजा रघुगोन को उपदेश दिए थे, परंतु राजा रघुगोन कहते हैं इन उपदेशों को मैं अच्छी तरह से नहीं समझ पाया, इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप विस्तृत रूप से और सरलता से मुझे इन उपदेशों को बता सके ताकि मैं अपने आध्यात्मिक पथ को चल सकूं, कृष्ण भावना भावित बन सकूं। तो पुनः इस अध्याय में खुली तरीके से और स्पष्ट रूप से जड़ भरत जी यहां पर रघुगोन को उपदेश दे रहे हैं। तो इस उपदेशों में उस उपदेश का नाम भवाटवी अर्थात भौतिक संसार ये वर्णन करते हैं इस भवाटवी का। तो कई सारे उपदेश उन्होंने दे चुके और इस उपदेशों में वो राजा को, क्योंकि राजा रघुगण एक राजा है और राजनीतिक और राजसी पुरुषों का किस तरह का व्यवहार होता है इस श्लोक में उन्होंने बताया है। तो श्रील प्रभुपाद ने यहां पर जो अपने को अहम ममेति या ममेति शब्द आया है तो ममेति के बंधन में बांधकर इस साम्राज्य को अपना मैं मेरा मेरे मेरा राज्य मेरी पत्नी मेरे पुत्र इस अहम ममेति के इस बंधन में अपने को बांध देते हैं। ऐसे राजा केवल अनेकानेक राज्य पर आक्रमण करके उन्हें जीतकर अपने साम्राज्य को बढ़ाने में ही मग्न होते हैं। एक ये बाजू है और दूसरी बाजू में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि ऐसे राजा अपने अंतर्गत शत्रुओं को नहीं जीतते हैं बल्कि बाहरी शत्रुओं को जीतने के लिए अपना शौर्य और वीर्य लगाते हैं। तो इतिहासों में जैसे सृष्टि से प्रारंभ कई सारे ऐसे राजा हो गए जो आत्मपथ पर अपने आंतरिक इंद्रियों को जीतने में उन्होंने अपना जीवन यापन किया और कई ऐसे राजा हो गए जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भले उसके लिए उन्होंने कितने ही कुमार्गों को क्यों ना अपनाया हो, ऐसे राजाओं की प्रणाली हमारे इतिहासों में देखी गई है। और जो आत्म साक्षात्कारी राजा उस पथ पर चलते हुए सूर्य साम्राज्य को किस प्रकार कृष्ण भावना भावित पथ पर ले जाते हैं इन राजाओं की भी यहां पर हमारे इतिहासों में एक प्रणाली है। तो हम कुछ राजाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद एक बार एक स्टोरी बता रहे थे राजा अलेक्जेंडर की। राजा अलेक्जेंडर कई सारे साम्राज्यों को अपनी शक्ति का लोहा अपनाते हुए परास्त करते करते जब सिंधु नदी के पास पहुंचा, पौरस राजा को उसने हराया और हराने के बाद जब वो हिमालय की कंदराओं से उसे पता चला कि भारत में केवल राजा ही शक्तिशाली नहीं तो वहां के वीर संत पुरुष जो बहुत योगिक शक्तियां रखते हैं तो उन्हें इच्छा हुई कि चलिए देखते क्या इन योगियों महात्माओं के पास ऐसी क्या शक्ति है जो बैरागी की तरह रहते लेकिन उनके पास बहुत योगिक शक्तियां होती है। तो वो हिमालय में एक योगी के पास जाता है और देखता है कि योगी केवल कोपिन धारण किए हुए भरी धूप में सड़क पर व चट्टान पर लेटा हुआ है। तो उन्होंने अलेक्जेंडर ने उस योगी से कहा कि आप इतने प्रसन्न और इतने तेजस्वी कैसे लग रहे हैं, क्या राज है, तो वो बताइए। तो बोले आप मुझे ये रहस्य बताइए, मैं आपको इस पृथ्वी का साम्राज्य मेरे पास बहुत है, मैं आपको जो चाहिए वो दूंगा। तो वो योगी कहते हैं कि आप मेरे सामने जो खड़े बाजू से हट जाइए, बस मेरे लिए इतना करिए। तो अलेक्जेंडर समझ पाया क्यों, तो जब भाई तो जो सूर्य का प्रकाश था ये हमारी संपत्ति है और ये धरती जिसके बल पर योगिक बल पर और सूर्य के प्रकाश से हमें आत्मबल प्राप्त होता है। तो अलेक्जेंडर हैरान हो गया कि मैं सब कुछ देने के लिए इच्छुक लेकिन लेने के लिए तैयार नहीं। तो अलेक्जेंडर विचार करता है कि मेरे पास इतना साम्राज्य सब कुछ होते हुए मैं भी संतुष्ट नहीं हूं लेकिन ये योगी केवल कोपिन धारण करके भरी धूप में योग क्रिया के द्वारा अपने आप को आत्मसंतुष्ट बनाए। तो वहां पर कहते हैं कि ऋषि आप केवल बाहरी शत्रुओं को जीतने के प्रयास में लगे लेकिन आप अपने अंतर के शत्रुओं को नहीं जीत पाए और उनके गुलाम बनकर पूरे पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। तो ये स्टोरी सुनाने का प्रभुपाद एक शिष्य उनको पूछता है कि श्रील प्रभुपाद हम भी आपको क्या दे पाए। तो प्रभुपाद बोले मुझे कुछ देने की आवश्यकता नहीं, मैंने जो आपको दिया है बस उसी का आप पालन करो, आप कृष्ण भावना भावित हो जाओगे। तो हम देखते हैं श्री प्रभुपाद इस तात्पर्य में एक लाइन कहते हैं कि अंतर्गत शत्रुओं को जीतने का प्रयास करना चाहिए। तो अंतर्गत शत्रु है षडरिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष। तो कई राजा बहुत शक्तिशाली होते हैं, अपने समान शक्ति वाले वीर पुरुषों के साथ युद्ध करते हैं और उन्हें परास्त कर उनके अहंकार में सोचते कि मैं इस राज्य का चक्रवर्ती सम्राट हूँ और मेरे अधीन सारी पृथ्वी है। तो कई सारे ऐसे राजा हो गए जो इस मोह में इस पड़ गए और अपना संपूर्ण जो मानव जीवन जिसके लिए प्राप्त हुआ था आत्म साक्षात्कार के लिए, उसे उस पद पर नहीं चल पाते। तो महाभारत में हम देखते हैं कि दुर्योधन भी इसी का प्रतीक है, जो यहां पर बताए गए ऐसे राजा बहुत शक्तिशाली था लेकिन वो अंतर्गत शत्रु के इतने अधीन था, जिस प्रकार ईर्ष्या, और दुर्योधन के पास ईर्ष्या नामक जो शत्रु था बहुत प्रबल था, वो इतना ईर्ष्यालु था कि बचपन से ही उन्होंने पांडवों को अपना प्रतिद्वंद्वी दुश्मन समझ लिया था और उन्हें किसी भी तरह परास्त करने के लिए वो प्रयत्नशील था और उन्हें मार डालने के लिए, क्योंकि वो सोचता था कि संपूर्ण हस्तिनापुर राज्य मेरे पिताजी सबसे बड़े और उनका बड़ा पुत्र होने के नाते ये साम्राज्य केवल मेरा है, क्योंकि यहां बोलते हैं हमें मत अहम का पहला ही होता है। तो व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से बनाता और शरीर के प्रति जो भी है उसे मैं और मेरा मानते हुए चलता है। तो क्योंकि दुर्योधन, अभी तीन दिन पहले हम सुन रहे थे चैतन्य चरण प्रभु से दुर्योधन के पूरा संपूर्ण वृत्तांत, उन्होंने कम से कम डेढ़ घंटा वो क्लास दिया, उसमें कहा कि कली का यह प्रतीक था और कली का प्रतीक होने के कारण इसमें सारे दुर्गुण और जन्मते ही जब सारे अपशकुन प्रकट हो गए थे दुर्योधन के। तो दुर्योधन सोचता था कि राज साम्राज्य मेरा है, तो इसने कई सारे घिनौनी हरकत पांडवों के साथ, उन्हें बचपन में भीम जी को विष दिलाया, लाक्षागृह में पांडवों को दाह करने का प्रयास किया। तो दुर्योधन इस ईर्ष्या के बस इतना ईर्ष्यालु हो गया था कि जब दोनों पांडव और कौरव के विभाजन हुआ और कौरव पांडवों को इंद्रप्रस्थ जो खांडव वन पहले था वो दिया गया, जो केवल खंडर भूमि थी, वहां पर कुछ भी नहीं था, परंतु भगवान कृष्ण की सहायता से और उनके सामर्थ्य बल से उन्होंने उसको बहुत सुंदर नगरी बना दी। तो अर्जुन जब वहां पर देखने के लिए गया और राष्ट्रीय यज्ञ नामक जब यज्ञ हुआ, तब दुर्योधन और अधिक ईर्ष्या से जल उठा कि हमारे हस्तिनापुर से भी बहुत सुंदर और दिव्य अद्भुत महानगरी जो स्वयं विश्वकर्मा ने बनाई थी, उसे देखकर वो बहुत ईर्ष्यालु हो गया और उसने सोचा, चैतन्य जैन बता रहे थे, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है उसके पास भले कितना ही हो उससे सुखी नहीं होता है, दूसरे के प्रगति से और दूसरे के अधिकता से वो अधिक ईर्ष्यालु दुखी होता है। खुद के पास इतना हस्तिनापुर जैसा साम्राज्य होकर भी वो दूसरे के सुख से दुखी था। तो आज संपूर्ण विश्व में यही स्थिति है कि लोग अपने पास जो कुछ है उससे सुखी नहीं है लेकिन दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। तो दुर्योधन भी उसी प्रकार छल कपट से उन्होंने पांडव का राज्य अपने मामाश्री की सहायता से कपट की पूर्ण द्वैत क्रीडा के द्वारा उसने युधिष्ठिर महाराज का संपूर्ण राज्य हड़प लिया। तो एक बात देखते कि दुर्योधन केवल अपने सामाजिक या राजनीतिक सामर्थ्य के आधार पर या कपट नीति से युधिष्ठिर जैसे राजा को गलत तरीके से और अपने ईर्ष्यावश अहम ममिति के कारण फंस कर उन्हें जीतने का प्रयास करता है, परंतु युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु कहा जाता है क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे, धर्म के साक्षात मूर्तिमंत रूप थे, स्वयं धर्मराज थे। तो जब आत्म साक्षात्कारी पुरुष होता है वो कभी इस संसार से अपना ममत्व नहीं जोड़ता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जीवन क्षणभंगुर है और इस क्षणभंगुर जीवन में जीते हुए भी हमें आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना है। तो राजा युधिष्ठिर इतना राज्य छीन लेने के बाद भी दुखी नहीं हुए, सभी अपने पांचों भाइयों के साथ, चारों भाइयों के साथ और माता के साथ वन के लिए गमन किया। तो युधिष्ठिर महाराज दिखाते संयमशीलता का उदाहरण कि संपूर्ण राज्य खो जाने के बाद भी क्षण भर के लिए भी विचलित नहीं हुए, तो ये आत्म साक्षात्कारी पुरुष का लक्षण होता है जो आत्म पथ पर चलता है, कि जो उसके संपूर्ण खो जाने के बाद भी विचलित न होते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। तो कई ऐसे सारे गुणों का वर्णन महाभारत में राजा युधिष्ठिर का किया गया है, अजाशत्रु उनका कोई भी शत्रु नहीं था। तो एक बार जब दोनों कौरव और पांडव बड़े होने लगे और जब राजकुमार कौन होगा हस्तिनापुर का, इसके लिए सभा बुलाई गई और सभा में निर्णय करना था धृतराष्ट्र को, क्योंकि भीष्म ने भी और विदुर जी ने भी कह दिया कि यह अधिकार आपके हाथ में है, हम केवल आपको सलाह दे सकते हैं, परंतु यह अधिकार आपका है। तो धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह के कारण वो वही चाहता था, वो भी मोह से बंधा था, एक राजा होकर भी उसके राज्य कर्तव्य से पूरी तरह से च्युत था। तो धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ बताया चैतन्य चरण ने, जो धृत मंजे दृढ़ है, राष्ट्र से आसक्त है, तो इस आसक्ति के कारण वो राज्य को अंधे होते भी छोड़ना नहीं चाहता था और अपने पुत्र को देना चाहता था। जब सभा में ये निर्णय करने की बात आई तो उतने में कुछ सैनिक चार व्यक्तियों को पकड़कर राज दरबार में लाते हैं। युधिष्ठिर महाराज की निर्णय क्षमता का यहां पर उदाहरण है। तो चार व्यक्ति को लाया जाता है जिनका अपराध था किसी की हत्या करने का। तब कहा जाता है कि जब वो चार प्रवेश करते हैं राज्य दरबार में, तब धृतराष्ट्र के सामने उन चारों का वर्णन किया जाता है उनके अपराधों का। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि जो राजकुमार है उन्हीं को मौका दिया जाए कि निर्णय करने का। तो जब दुर्योधन कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूं तो मैं निर्णय करता हूं पहले, तो दुर्योधन निर्णय करता है कि चारों का अपराध एक ही है, किसी हत्या की है, तो हत्या का एक ही दंड होता है मृत्युदंड, तो चारों को मृत्युदंड दिया जाए। तो सब उनके जो पक्ष वाले थे दुशासन कर्ण शकुनि वो जय जयकार करते हैं, जय हो राजकुमार की जय हो, बहुत सुंदर निर्णय। तो विदुर जी पितामह भीष्मा वो संतुष्ट नहीं होते वो निर्णय से, तो धृतराष्ट्र भी आदेश देता हां सजा दी जाए। तब तक विदुर जी कहते हैं कि नहीं, आपने केवल एक पक्ष को निर्णय करने का आदेश दिया, एक चुनौती संधि दी, दूसरा धृतराष्ट्र सॉरी युधिष्ठिर को भी निर्णय करने की संधि दी जाए। तब युधिष्ठिर महाराज वो निर्णय करते हैं कि पहले जानना चाहते हैं कि चारों जो व्यक्ति है ये किस किस वर्ण के। तो जो बताया जाता है, एक पहला बताते कि मैं शूद्र जाति का हूं, दूसरा बताता मैं वैश्य हूं, एक बोलता क्षत्रिय और ब्राह्मण, ऐसे चारों वर्णों के चार व्यक्ति थे जो चारों ने सम्मिलित होकर वो वध किया था। तो युधिष्ठिर महाराज अपने निर्णय सुनाते कि जो शूद्र होता है वो अज्ञानी होता है, उसका गुना 25% है, चार गुना माना जाता है, तो उसे 25% सजा होनी चाहिए। तो दूसरा वैश्य, ये वैश्य थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है तो इसीलिए इसको इससे दुगनी सजा दी जाए। और जो क्षत्रिय होता है वो तो राज्य का रक्षक होता है और राज्य का रक्षक होकर वो किसी की हत्या करे भी वजह से, तो उसे 3 गुना अधिक दंड दिया जाए। और चौथा ब्राह्मण, वो तो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होता है, उस आधार पर वो अधिक जानकारी अधिक ज्ञान रखने के कारण उसे 4 गुना अधिक सजा दी जाए। तो इस प्रकार वो निर्णय सुनाते हैं। तो इस निर्णय से संपूर्ण राज्य प्रभावित होता है और देखता है कि दूत युधिष्ठिर महाराज कितने दूरदृष्टि और ज्ञानवान थे, निर्णय करने की क्षमता उनमें। तो यहां पर बताते कि आत्मसाक्षात्कार पद पर चलने वाले राजाओं के 6 गुणों का वर्णन किया गया है। उन्हें व्याख्यान शक्ति, प्रगल्भता, तर्क कुशलता, भूतकाल की स्मृति, भविष्य पर दृष्टि तथा नीति निपुणता। तो केवल कई सारे गुण धृतराष्ट्र में, क्योंकि धर्म के साक्षात ये मृत्युवंत रूप थे, तो युधिष्ठिर महाराज इतने शक्तिशाली राजा कैसे हुए। तो श्रील प्रभुपाद भागवतम के जब पितामह भीष्म का प्रसंग आता है उपदेश देने का, तब उस परपट में लिखते हैं कि धृत जो युधिष्ठिर थे वो ब्राह्मण, ईश्वर और धर्म, इन तीनों को लेकर चलते थे। तो ब्राह्मणों की आज्ञा के वो कार्य करते थे और ईश्वर को ईश्वर की इच्छा से अपनी इच्छा को सम्मिलित करते कार्य करते थे और धर्म को पूरी तरह से पालन करते थे। इन गुणों के कारण वो इतने शक्तिशाली राजा हुए और आत्मसात, तो इतना ही नहीं तो स्वयं भगवान उनके पक्ष में थे। एक बार जब भगवान हस्तिनापुर का राज्य स्थापित करके युधिष्ठिर को राजा बनाकर वापस अपने द्वारका के लिए लौट रहे थे, तब कुंती महारानी सभी वहां की रानी पटरानियां भगवान को रोकने का प्रयास करती है। कुंती महारानी के अष्टम कई सारे श्लोक है कुंती की प्रार्थना, उन्होंने वो कई भगवान का गुणानुवर्णन करते कि आप पुनः यहाँ पर रुक जाइए ताकि आपके रहने से हमें आपका दर्शन होता है और पुनः दर्शन होने से आपका पुनर्भव दर्शन नहीं होगा। परंतु भगवान कुंती महारानी की बात को टालते हैं। उतने में वहां पर राजा युधिष्ठिर आते और वो कहते भगवान से कि आप और कुछ दिन के लिए रह जाइए। तो भगवान कृष्ण कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया और युधिष्ठिर महाराज के इस वाक्य को पालन किया और वही रह गए। केवल एक दो दिन के लिए, तो कई छह सात महीने के लिए वहीं पर भगवान कृष्ण रह गए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि युधिष्ठिर महाराज इतने प्रभावशाली थे, उनका वक्तृत्व यहां पर दिया कि एक क्वालिटी है व्याख्यान शक्ति और वक्तृत्व से, तो इतने पुण्यवान थे कि भगवान कृष्ण भी उनके आदेश को नहीं टालते थे। तो ऐसे राजाओं का वर्णन किया है। अभी अभी फिलहाल एक राजा हमारे भारत में हुए जो भी इसी तरह राजर्षि कहलाए, वो है शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज ने भी ऐसे दुष्ट राजाओं से साथ बहुत संघर्ष किया, जैसे औरंगजेब। तो बोलते हैं कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जो अहमति और इन शत्रुओं के घिरे होते हैं, ऐसे राजा इतने घिनौने हद तक कार्य करते हैं कि अपने पिता को भी नहीं छोड़ते। जैसे औरंगजेब ने सत्ता को हासिल करने के लिए, या तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि दूसरे की सत्ता हासिल करने के लिए लोग कार्य करते, परंतु खुद अपने पिता के सत्ता हासिल करने के लिए औरंगजेब ने अपने पिता को विष दे दिया, विष देकर मारा थोड़ा थोड़ा जर। तो जब शिवाजी महाराज एक बार तुकाराम महाराज की चर्चा संपूर्ण देहूगांव अन्य क्षेत्रों में फैल रही थी उनकी भक्ति की महिमा की, तो वहां पर एक रामचंद्र खान करके पंडित, वेदांत पंडित था, वो बहुत ईर्ष्यालु हुआ था और उसने उस सालो मालो करके था, उसके जरिए एक खबर राजा तक पहुंचाई कि ऐसा ढोंगी साधु और ढोंगी भक्त यहां पर अपना मान सम्मान बढ़ा रहा है, तो उसे आप और उसे कोई अधिकार नहीं शास्त्र के ऊपर बोलने का और भगवान के बारे में बोलने का, आप उसे निष्कासित कीजिए। तो शिवाजी महाराज के बाद जब खबर जाती है तो वो अपने सैनिकों के द्वारा सैनिकों को भेजते हैं कि ये इसकी परीक्षा लीजिए कि वास्तविक साधु है या केवल साधु का ढोंग रच रहा है, या वास्तविक भगवत भक्त है क्या नहीं। तो कई सारे प्रयास, तो उन्होंने कई सारे ज्वेलरी अलंकार रत्न सैनिकों के द्वारा भेजे थे, और जब सारे तुकाराम महाराज के घर भेजते हैं तो तुकाराम महाराज घर पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनकी पत्नी और बच्चे होते हैं, तो बहुत खुश हो जाते हैं कि राजा के द्वारा हमारे लिए इतना सारा उपहार तो उन्होंने कभी नहीं देखा होता है, क्योंकि तुकाराम महाराज संपूर्ण तरीके से गृहस्थ होकर भी एक वैरागी तरह जीवन जीते थे और जितना उनके अपने कर्मों से प्राप्त होता था उसी में संतुष्ट होते थे, तो ज्यादा धन नहीं था, तो इतना सारा धन देखकर वो उसकी पत्नी बहुत खुश होती है, सुंदर कपड़े गहने तो पहन लेती है। उतने तुकाराम महाराज वहां पर पहुंचते और वो कहते, वो देखते कि उनकी पत्नी आज बहुत सुंदर अलंकारों से सजी धजी है और उनके पुत्र भी सैनिक के वेश में है, तो वो सारा का सारा तुरंत उतार कर फेंकने लगते हैं। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि पराये का धन हमारे लिए विष के समान होता है, इसलिए पराये का धन नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए त्याग दो। तो ये बातें जब सैनिक सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि खुद चलकर आई हुई लक्ष्मी को जो दूसरे की मानकर, एक श्लोक है ना, परद्रव्येषु लोष्टवत्, साधु इसी कारण और जीवन जगता, आत्मवत मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। तो ये वास्तविक आत्मसारी पंडित का लक्षण होता है। तो तुकाराम महाराज ने दिखाया कि परद्रव्य जो होता है वो पत्थर के समान मिट्टी के समान होता है, तो इसलिए त्याग दो। तो ये वचन सुनकर सारे रहने हैरान, और शिवाजी महाराज भी वही उपस्थित थे और छुपके से देख रहे थे। तो शिवाजी महाराज उनके पांच चरणों में आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं कि आप वास्तव में महान संत महात्मा है और आप मुझे क्षमा कीजिए कि किसी के कहने के पर मैंने आपके परीक्षा ली।
तो आप मुझे कुछ उपदेश दीजिए। तो तुकाराम महाराज बोले, आज हमारी सभा शाम को विट्ठल मंदिर में है, तो आप यहाँ पर उपस्थित रहे, तब मैं भाषण प्रवचन देने वाला हूँ। तो जब प्रवचन देते हैं तो तुकाराम महाराज के इतने सुंदर कीर्तन और प्रवचन से इतने शिवाजी महाराज प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि आज से आप मुझे आपका शिष्य ग्रहण करिए, आज मैं अपने साम्राज्य को त्यागता हूं, क्योंकि मैं अपने शक्ति से संपूर्ण साम्राज्य को जीतने के लिए कई सारे प्रयास कर रहा हूं, परंतु आज के आपके इस सुंदर उपदेशों से मुझे आत्मसाक्षात्कार हुआ कि मुझे बाहरी शत्रुओं को जीतने में अपनी शक्ति का उपयोग न करते हुए अंतर्गत शत्रुओं को जीतने के लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। इतना सुंदर वाक्य जब बोलते हैं तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि आप अपने साम्राज्य को में रहते हुए भी अंतर्गत शत्रुओं को जीत सकते हैं, क्योंकि आप क्षत्रिय होने के नाते आपका कर्तव्य है राज्य करना और राज्य को सुव्यवस्थित ढंग से क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसे पालन करना। तो आप पुनः राज्य लौट जाइए, अपने राज्य का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण राज्य आपका आपके ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए आप जाइए। तो शिवाजी महाराज तब से तुकाराम महाराज और रामदास स्वामी इनके शिष्य थे और उन्होंने अपना जीवन पहले से ही, तो वो रामायण महाभारत के उपदेशों से अपनी माता के द्वारा, उनकी पहली गुरु माता ही है, उनके द्वारा वो उसी तरह आत्म साक्षात्कार जीवन यापन कर रहे थे और एक धर्मनिष्ठ राजा के द्वारा अपने राज्य का देखभाल करते थे। तो इस प्रकार इस राज्य प्रणाली में हम कई सारे राजाओं का वर्णन सुनते हैं कि आत्मा। तो यहां पर प्रभुपाद बताते हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार राजाओं को एक सन्यासियों के पास, आत्म साक्षात्कारी पुरुषों के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस संसार भौतिक बंधन ये भवाटवी इतनी दृढ़ माया शक्ति है कि अच्छे अच्छे बलशाली राजा भी इसके चपेट में आकर अपना जीवन सर्वनाश कर गए। तो उसी प्रकार यहां पर भी उपदेश राजा रघुगण को दिया जा रहा है, क्योंकि राजा जड़ भरत के द्वारा, जड़ भरत जी स्वयं पहले पिछले जन्म में एक राजा चक्रवर्ती सम्राट रहे और उन्होंने भी कभी अपना राज्य त्यागा, जब उनके पिताजी ऋषभदेव जब ये 100 के 100 पुत्र किसी एक सभा में साधुओं के संग में कुछ वार्तालाप कर रहे थे, तब वहां ऋषभदेव जाते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हें राज्य किस तरह करना चाहिए और तुम्हें जीवन का लक्ष्य क्या है बताते हैं। तो भागवतम के पंचम स्कंद के पंचम अध्याय में दूसरे श्लोक में वर्णन बताते किस तरह हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन लक्ष्य पूर्णत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने एक श्लोक कहा है, मत सेवा द्वार आहुर मुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समाचित्ता प्रशांता विम नव्य श्रोदम साधु होए। कि महात्माओं की सेवा करके मनुष्य भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये पुरुष परोपकारी तथा भक्त होते हैं, ईश्वर से तदाकार होने अथवा श्री भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। तो वही प्रभुपाद यहां बताते कि साधुओं और सन्यासियों के संगति में जाकर आध्यात्मिक पथ को धारण करना चाहिए। तो ऋषभदेव ने अपने संपूर्ण पुत्रों को भी यही उपदेश दिया कि महत सेवा, कि बिना साधु संग के हम आध्यात्मिक पथ को प्राप्त नहीं कर सकते, ना कि भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। जब मैं पिछले महीने हम वृंदावन में गोवर्धन के तले रिट्रीट कर रहे थे, तो वहां पर महानिधि स्वामी लेक्चर देने के लिए आए थे, तो उन्होंने इस श्लोक का इतना सुंदर तरीके से, हम बोलते केवल, लेकिन उन्होंने इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन किया कि साधु संग सर्वशास्त्र का है। मतलब सभी शास्त्र कहते कि साधु संग करो, ये शास्त्र में लिखा है, परंतु कहते हैं कि साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो शास्त्र कहते साधु संग, परंतु हमें स्वयं साधुओं के निकट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे साधु जिन्होंने आत्म साक्षात्कार और स्वयं अपने हृदय में भगवान को धारण किया होता, उनका लव मात्र साधु संग करने से हमें सर्व सिद्धि प्राप्त होती, भगवान प्राप्त होता। कि केवल शास्त्रों में पढ़ते रटते श्लोक नहीं, तो ऐसे महात्माओं के पास जाना चाहिए। तो प्रभुपाद भी बोलते कि परंतु कई ऐसे ढोंगी राजनेता है जो साधुओं के पास जाते हैं, खुद भी सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो आज हमारी पूर्ण विश्वभर की राजप्रणाली इसे आधार पर है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रदेश को बढ़ाने के लिए राजप्रणाली का उपयोग किया जाता है। कई सारे राजनेता हैं जो किसी साधु के पास न जाकर किसी ब्राह्मणों का
उपदेश न ग्रहण करके राज्य को नहीं चला रहे। तो इस प्रकार कई सारे राजा है, तो राजा जड़ भरत भी पहले इस ज्ञान ले चुके हैं आत्म साक्षात्कार का, इसलिए वो इस जन्म में जड़ भरत के रूप में वो किसी वो बता रहे, मैं किसी से भी आसक्त रघुगण को बताते कि राज्य इस तरह माया का बंधन है कि हमें मोहित करके बांध के रखता है, तो इसलिए इस जन्म में वो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करते और पागलों की भांति संपूर्ण विचरण करते हैं, और अंदर से आत्म साक्षात्कार लेकिन बाहर से पागलों की भांति भ्रमण करते हैं। और राजा रघुगण को भी ये उपदेश बता रहे कि तुम भी एक राजा हो और राजा होने के नाते तुम भी उस तरह राज्य करो कि बिना आसक्ति हुए अहम अमिति में गिरे हुए और आत्म साक्षात्कार के ऊपर आगे बढ़ो। क्योंकि राजा रघुगण का ही भरत जी को एक विनती थी कि आप मुझे आत्म साक्षात्कार का सरल और सर्वोत्तम उपाय बताइए। तो इसी श्लोकों के जरिए हम देखते हैं कि राजा जड़ भरत जी ने रघुगण को यह उपदेश दिए। तो मैं यहां पर समाप्त करता हूं। हरे कृष्णा। कोई किसी का टिप्पणी या प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, इतना योग्य नहीं उत्तर देने, प्रयास करूंगा।
हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्णा।
आपने जो अर्जेंट की बात कही ना, इसके ऊपर एक बात याद आ गई मेरे को।
क्या कहे?
वो यूनान से जब हिंदुस्तान को लूट ले चला था, उस टाइम यूनान के लोग बोले तुम वहां से महात्मा भी लूट के ले आ रहा है, एक महात्मा भी लूट के ले आ रहा है, तो धन तो लूटने जा रहा है महात्मा भी लूट के आ रहा है। तो एक बार जब वो हिंदुस्तान का लूट के वो जा रहा था यूनान में वापिस, तो रास्ते में एक छोटा सा डेंगू मच्छर उसको काट गया और वो इतना बीमार हो गया कि कोई भी वैद्य कोई भी हकीम उसका इलाज नहीं कर सका। उसने कहा कि मैं अपना सारा राज्य दे दूंगा, तुम मुझको ठीक कर दो, मुझे अपनी माँ से मिलना है, क्योंकि उसको अपनी माँ से बहुत प्यार था। लेकिन वो सारे वैद्य हकीम बोले तुम सारा राज्य क्या सब कुछ दे दो तब भी तुम ठीक नहीं होगे, दो घंटे का टाइम भी नहीं मिलेगा तुमको। तो उसको ध्यान में आया अब मेरी मौत हो जाएगी, यही हो जाएगी, तो मेरे को एक ही बात कर रहा है, मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, लोग ये समझ जाए जब सिकंदर कुछ नहीं दे जा सका तो हम क्या ले जाएंगे, इसलिए मेरी मौत भी हो जाए तो ताबूत से बाहर हाथ निकाल देना। वो यूनान नहीं पहुंच सका था, जिसने सारी दुनिया को जीत लिया था वो अपनी माँ को भी नहीं देख सका।
सिकंदर था।
सिकंदर।
कोई है? कोई प्रश्न पूछना?
हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर क्लास है आप।
हाँ।
आप जो बताया है जो युधिष्ठिर महाराज ने डिसाइड किया है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों आदमियों को क्या दंड देना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं महाभारत में युधिष्ठिर महाराज जो ब्राह्मण थे ब्राह्मण का डिसाइड नहीं किए, उन्होंने बोला ये गुरु हमारा आचार्य है, गुरु द्रोणाचार्य है, उन्होंने डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो ब्राह्मण है मैं क्षत्रिय हूं, तो क्षत्रिय का उचित नहीं है ब्राह्मण को क्या दंड देना चाहिए ये सब डिसाइड करना। तो ये इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने बोला जो ये डिसाइड निर्णय करेंगे हमारा गुरु द्रोणाचार्य।
धन्यवाद, थैंक यू।
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने प्रवचन में बताया। प्रभु जी आपने शिवाजी के बारे में जो बताया, शिवाजी भले तुकाराम महाराज के पास गया मगर कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि शिवाजी ने हरे कृष्ण जप किया है या कृष्ण की भक्ति की है। बताया जाता है शिवाजी तो शिव जी के भक्त थे, तो शिवाजी के चरित्र से हम कृष्ण भावनामृत कैसे हो सकते हैं, जैसे आपने बताया आत्म साक्षात्कार।
मैंने शिवाजी के उदाहरण से कृष्ण भावनामृत बनने का नहीं, शिवाजी का वृत्तांत दिया कि तुकाराम महाराज ने उनको उपदेश दिया कि आप अंतर्गत उन्होंने उनके उपदेशों से ग्रहण किया कि अंतर्गत शत्रु को जीतने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें प्रभुपाद ने जो लाइन कही है उसके अनुसार मैंने इसका दृष्टांत बताया कि जो साधु संत होते हैं उनके संघ में जाने से हमें पता चलता है कि अंतर्गत शत्रु को जीतने का प्रयास करना चाहिए। तो ये शिवाजी महाराज ने वहां से तुकाराम महाराज से उपदेश शिक्षा ग्रहण की। ये इस बताने का तात्पर्य कि शिवाजी महाराज के बिना तुकाराम महाराज एक स्वयं भगवत भक्त है, वैष्णव है, और वो उनके उपदेश कृष्ण भावना भावित ही थे, तो वो कृष्ण भावना भावित उपदेश शिवाजी महाराज को बताया। ये इस उत्तांत के अनुसार मैंने वो स्टोरी बताई।
अगर फिर भी शिवाजी महाराज ने कृष्ण भावना मूर्त संपूर्णपणे स्वीकार नहीं किया, वो तो देशभक्ति के प्रतीक थे। तो इस तरह हम देखे जाए तो जैसे ये सारे जो राजा है और राजा रघुगण है और वो सब राजा के उदाहरण से शिवाजी का जो है हम उसको रघुगण के सामने ऐसे ले नहीं सकते। जैसे कृष्ण भावनामृत जिस तरह उन्होंने तीव्र भक्ति किया रघुगण राजा ने, जिस तरह आत्म साक्षात्कार करने वो भी गए थे, लेकिन जड़ भरत ने उपदेश दिया तो उन्होंने तुरंत कृष्ण भक्ति को स्वीकार लिया। और जब शिवाजी को तुकाराम महाराज ने उपदेश दिया, शिवाजी ने तुकाराम महाराज का उपदेश उसके जीवन में आचरण नहीं किया है, क्योंकि वहां लिखा गया है शिवाजी है जो शिवजी के महान भक्त थे। तो वो हिसाब से कृष्ण भावनामृत आपने जो बताया सही बताया कि लेकिन ऐसे इस रघुगण ने जिस तरह स्वीकारा वैसे शिवाजी ने स्वीकारा नहीं है।
तो शिवाजी नहीं स्वीकारा तो उनका प्रश्न था, हम तो यहाँ पर उदाहरण के प्रस्तुत से दे रहे है ना। तो उदाहरण के दृष्टि से एक प्रसंग बताया तो प्रसंगों को ले सकते हैं, प्रसंगों का ऐसे नहीं तो कई सारी काल। हाँ तो प्रभु जी उसका आंसर देंगे, चेतन चरण प्रभु उसका उत्तर दे रहे हैं। हरे कृष्णा, वो माइक चेतन चरण प्रभु को दीजिए। सुंदर चेतन
हरे कृष्ण। एक्चुअली अगर हम देखें पूरे शिवाजी का जीवन तो वो राजा थे, क्षत्रिय थे, धर्म का रक्षण किए, लेकिन साथ ही साथ वो वैष्णव भी थे। क्यों? अगर कोई प्रामाणिक वैष्णव गुरु की शरण लेता है तो वो वैष्णव ही कहलाएगा। वो राजकारभार करने में वो अलग अलग चीजें कर सकता है। वो शिव जो शंकर है उनकी भी उपासना कर सकता है। हम देखते हैं कि जब रुक्मिणी जी जाती हैं तो रुक्मिणी वो काली की पूजा करती हैं,
तो कात्यायनी की पूजा करती है।
क्षत्रिय लोग अलग अलग कारणों से देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, कुछ कुछ अलग चीजों से, लेकिन वो हमेशा जो ब्राह्मण रहते हैं उनके अनुसरण करते हैं। और यहां पे तो हम देखते हैं कि वो हमेशा जो साधु महात्मा रहते थे उनके आदेशों का पालन करते थे। यही नहीं, ये जो महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित है, जब भी कोई आदमी मिलते हैं एक दूसरे से तो राम राम बोलते हैं, राम राम पावन,
राम राम।
सो दैट राम राम इज ऑल्सो स्टार्टेड बाय शिवाजी महाराज ओनली। ही मेड अ रूल इन द सिटी इन हिज किंगडम, एनी वन हु कम्स एंड मीट्स, तो वो पहले राम राम बोलना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि अभी इतना वो हरिनाम का प्रचार किए उस तरह से, राजा थे उन्होंने कंपलसरी किया राम राम कहना, और उनका जो ध्वजा भी था वो भी वैराग्य का प्रतीक है
भगवान।
तो और भी बहुत सारे चीजें हैं जिसे हम देखते हैं, कि सिर्फ क्षत्रिय नहीं बल्कि एक वैष्णव राजा थे।
इतना ही, यदि वैष्णव नहीं होते तो स्वयं भगवान विट्ठल जी उनको नहीं बचाते। जब एक बार आक्रमण हुआ तो तुकाराम महाराज यदि वैष्णव नहीं है, वैष्णव राजा नहीं है तो उसे बचाते नहीं, जो स्वयं भगवान विट्ठल जी ने कई सारे शिवाजी के रूप धारण किए। तो इससे भी यह साबित होता है कि वो वैष्णव थे, ऐसा नहीं कि नहीं वैष्णव थे। हरे कृष्ण। ग्रंथा श्रीमद भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। प्रेमानंद है।